मराठी जिससे ज्यादा जो है वो पसंदीदा हमारी है। ऐसे तो नेक अमल हर जमाने में पसंद है, लेकिन खसूसियत के साथ इन 10-10 दिनों में पसंद। इसी तरह दूसरी रिवायत में सहाबा किराम ने पूछा, क्या इन 10 दिनों में जो इबादत का सवाब बनता है वो जिहाद से भी बढ़कर है? तो इस पर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि हाँ, जिहाद करने वालों से बढ़कर सवाब है, सिवाय उसके जो जिहाद के लिए अपना जान और माल लेकर जाए और इनमें से कोई चीज वापस ना आए, यानी माल भी जिहाद में सही हो जाए और जान भी वहां पर जो है कुर्बान हो जाए, तो उसका तो उसकी फजीलत ज्यादा है, वरना जो है वो इन 10 दिनों में इबादत की फजीलत उससे भी ज्यादा। इसी तरह तिब्रानी में रिवायत है कि इन 10 दिनों में किया क्या जाए, इसके लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमारी जो है तालीम फरमाई। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक अशराए ज़िलहज्जा से ज्यादा अजमत वाले कोई अय्याम नहीं और ना इन दिनों के अमल से ज्यादा किसी दिन का अमल महबूब है, लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह तहमीद तस्बीह और तहमीद कसरत से किया करो। क्या मतलब है जनाब? तस्बीह एक तो लुफी माने होते हैं, इस्तेलाही माने होते हैं। तस्बीह के लुफी माने होते हैं तहराना, किसी को उच्च मुकाम पर बरकरार रखना, लेकिन इस्तेलाही माने क्या होते हैं? सुभान अल्लाह कहना जबान का। इसी तरह तहमीद का मतलब क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यह अल्फाज अदा करना। इसी तरह तहमीद क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, और तकबीर अल्लाहु अकबर कहना। तो ये जो तीसरा कलमा है सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जिसमें ये चारों कलमा आ जाते हैं, तो इसकी कसरत जो है वो इस जमाने में रखनी चाहिए। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें से कोई ऐसा शख्स है जो रोजाना बहुत के पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ताकत किसमें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स में इसकी ताकत। सहाबा किराम ने अर्ज किया, इसकी क्या सूरत है? इरशाद फरमाया, सुभानअल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है, अल्लाह अकबर का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। अब जहाँ ये रिवायात इस तरह की आती है जिनमें थोड़े से अमल पर बहुत ज्यादा अजर का जिक्र होता है, वहाँ एक बात समझ में कि ये उन लोगों के लिए है जो फराइज पर अमल करें और हराम से बचे रहें, वरना जब आदमी कोई बुराई करता है तो वो अल्लाह को नाराज कर देता है, जब अल्लाह नाराज हो जाए तो वो फिर इतने छोटे अमाल पर फिर अल्लाह से उम्मीद रखना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये उम्मीद तो वही लोग रखें जो पढ़ाई अदा कर रहे हो और बुराइयों से बचे हो। इसलिए ये असल में मजमून जिससे ये दिया गया है वो है मौलाना मोहम्मद वली राजी साहब का, अखबार में उनका ऐसा आर्टिकल, उससे ये मजमून बनाया गया, वो भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बात अर्ज करना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि फजाइल की रिवायात का ये मतलब हरगिज नहीं कि आदमी अमाल को करके ये समझे कि फजाइल की जरूरत नहीं है। फराइज को छोड़ने का मतलब अल्लाह ताला को नाराज करना है, इसको नाराज करके नफ्सी अमाल के जरिए इसी से अजर सवाब मुतवक्का रखना महज इबादत। तो जिसने खुदा को नाराज किया हुआ है वो समझे कि मैं सुभान अल्लाह कह के और बात के बराबर अजर हासिल हो जाएगा, तो ये उसकी गलत है। जो लोगों के लिए जो फराइज अदा करें और जो हराम से बचें। एक और रिवायत मुस्लिम और बुखारी दोनों की है, इसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह ताला यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बहुत गयूर है और अल्लाह ताला की गैरत और गजब भड़क उठता है जबकि बंदा कोई ममनुआ काम करता है। जो काम अल्लाह ने मना किया है जब हमें से कोई वो करता है तो अल्लाह ताला जो है नाराज हो जाता है, उनका गुस्सा जो है भड़कता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफ अल्लाह को नाराज किया जा रहा है और ये छोटे छोटे अमाल करके ये समझा जा रहा हो कि हमें और बाहर से बड़ा अच्छा मिल गया, ऐसा जो है ये मैं हिमाकत होगी समझ। ये भी समझने की तोबा से जो है वो गुना माफ हो जाता है, या जो है ये जब आदमी जो है वो इस तरह के अमाल करते हैं तो अल्लाह की गोया की नाराजगी कुछ कम हो जाती है, लेकिन जो है वो फराइज खत्म नहीं हो जाते। हाँ, खत्म नहीं हो जाता। आपने किसी से कर्ज लिया है, आप वक्त पे अदा नहीं कर सके, आप उसके पास चले गए कि भाई मैं माजरत खाऊं, मैं आपका कर्ज अदा नहीं कर सकता, तो इससे क्या होता है? उसकी नाराजगी दूर हो जाती है, लेकिन ये नहीं हुआ कि आप कर्जा ही माफ हो गया, आप कर्जा उसका फिर वापस देने के लिए नहीं गोई हो जाता। तो इसी तरह अपने गुनाहों पर जो है वो तौबा करने से या जो है इस तरह नस्ली इबादत करने से अल्लाह ताला की नाराजगी कुछ कम होती है, लेकिन फराइज खत्म नहीं हो जाता, फराइज की मजा अपने करना होती है। ज़कात भी नहीं दी तो अब जो है ये अल्लाह से दुआ भी करे उससे अल्लाह की नाराजगी ताकि दूर हो, लेकिन कर अभी भी उसके ऊपर फर्ज मौजूद है तो फर्ज को अदा भी करे जैसे हम कदा करें। इसी तरह बंदों के साथ भी जैसे मामला आ गया, जहाँ ये चार अमाल बताए गए तस्जीह तहलील तकदीर तमजीद, यही एक और रिवायत भी है इससे मुताल्लिक, और ये मौलाना अब्दुर्रऊफ सकरी साहब ने अपने जो है किताब में नकल की है, और वो उन्होंने इसकी मजीद वजाहत इस तरह की है कि ये तस्जीह पढ़ने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चार कलमात बताए गए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह, इनमें से हर एक को 100 दफा पढ़ने का लज़्ज़त से सवाब कर दिया। तस्जीह पढ़ने यानी सुभान अल्लाह 100 दफा पढ़ने का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया 100 गुलाम आजाद करने के बराबर। इसी तरह तस्जीह कहने का सवाब जो है 100 घोड़े अल्लाह की राह में जिहाद में देने के बराबर सवाब के मतलब बराबर। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब जो है वो 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने के बराबर, और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब आया कि जो ये जमीन और आसमान के दरमियान जो जगह है वो गोया के फैल जाती है करने को अदा कर। अब खसूसी कुछ मामला है, मसलन ये तकबीर तशरीफ कहलाती है जी, और जिसके लिए ये जनाब इसका कहना वाजिब है, और 9 ज़िलहज्जा फजर से जो है इसका आगाज होता है और 13 ज़िलहज्जा की असर तक भी कहेंगे, और कम अज कम एक बार पर जवान रोजा करने के बाद एक बार मुतवस्त आवाज के साथ, ये नहीं जैसे मैं बैठ गया जरा जोर से आवाज के साथ, बहुत जोर से भी ना हो लेकिन ऐसी आवाज जो सुनी जा सकती हो, इस आवाज से पढ़ना वाजिब है, सिर्फ नफिल नहीं है, और ये मर्दों और खवातीन दोनों के लिए वाजिब। तो अक्सर हमारी खवातीन मर्दों को तो फिर एहसास हो जाता है मस्जिद में सब पढ़ रहे होते हैं, तो खवातीन जो है उन्हें इसका ख्याल नहीं रहता, तो ये 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक एक दफा पढ़ना जो है वाजिब। अल्फाज अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वबिललाहिल्हम्द, तो ये कम से कम एक दफा। इसी तरह बाल और नाखून काटने का मामला, इसमें भी रिवायात मौजूद है, और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ज़िलहज्जा का पहला अर्जा शुरू हो जाए यानी चांद देख लिया जाए और तुमने से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो तो उसको चाहिए कि अब कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून बिल्कुल ना कराते, अब इन बालों में जो है वो तमाम जिस्म के बाल आ जाते हैं और इसी तरह नाखून ये नहीं कराते चाहिए, लेकिन ये भी साथ साथ याद रहे कि ये मुस्तहब है, अगर कोई आदमी तराश लेता है बाल कटवा लेता है तो कोई गुनाह का काम नहीं, हाँ कोई नहीं करवाता अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करता है तो नस्ली सवाब रहता है, तो बिना वजह हमें इसमें मुतशद्दुद भी नहीं होना चाहिए कि जी जो करवा रहे उस पर जो है हम तस्दीक कर रहे हो, ये जो कर रहे हैं उसके लिए सवाब है, जो नहीं कर रहा कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन अमाल में से एक किया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबा को भी इसमें शामिल फरमा दिया, बड़ी जो है वो एक रिवायत और चलती है, अबू दाऊद और नसाई दोनों में जो है ये रिवायत नकल की गई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अलआस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अज़हा यानी 10 ज़िलहज्जा के दिन ईद मनाऊं, अल्लाह ने इस दिन को इस उम्मत के लिए ईद का दिन करार दिया। एक शख्स ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि अगर मेरे पास एक ही बकरी हो जो किसी ने दूध के लिए मुझे दे रखी हो तो क्या मैं इसकी कुर्बानी कर दूँ, अब ये गरीब था साथ और माल नहीं है ना साहिब हैसियत है लिहाज से कि कुर्बानी कर दो, लेकिन एक बकरी घर में जो इस्तेमाल की है दूध जो है वो उसके लिए उन्होंने रखी है और वो भी किसी ने दी है, پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں تم اس کی قربانی نہ کر بلکہ قربانی کے دن اپنے بال بنوا لینا اپنے ناخن کٹوا لینا اپنی مونچھیں کٹوا کر درست کر لینا اور زیرِ ناف کے بال صاف کر لینا بس اللہ کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ نہیں اس سے پہلے ذی الحج کا ذکر نہیں ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ پہلے ذی الحج تک جب تک قربانی سے فارغ نہ ہو جائیں اپنا یہ بالوں کو نہ کرا کے نہ ناخن کٹوا کے یہ مستحب ہے کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے کوئی سنت مقدا نہیں ہے مستحب ہے جو کر لے اسے ثواب ہے نہ کرے تو پھر وہ جو جتنا آگے بڑھے جی فرض یہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو جس کا واجب جو ہوتا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو اور جس کا حکم نہ دیا ہو لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول نے کیا ہو سنت مقدا اور جسے کبھی آپ نے کیا ہو کبھی چھوڑ دیا وہ اسے آپ نفل کہہ دیں سنت غیر مقدا کہہ دیں یا مستحب کہہ دیں ورنہ اصل میں دو ہی اصطلاحات ہیں ایک فرض ہے دوسرا نفل ہے ایک ہوتا ہے فرض اور دوسرا ہوتا ہے نفل یہ نفل کی جس میں واجب اور اسی طرح آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اصل میں تفصیل لیکن یہ واجب جو ہے وہ بہت قریب ہے فرض کے تو یہ جو ہے اس میں بہت باریک سا فرض ہے فرض اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو ہے وہ اس طرح الفاظ نہیں ملتے قرآن میں یہ فرضیت لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہمارے لیے وہ فرض کے برابر ہی جی نہیں نہیں امر کا صیغہ جو ہے وہ مشورے کے لیے بھی آتا ہے حکم کے لیے بھی آتا ہے یہ سب کے لیے آتا ہے تو وہ علماء کرام باقی روایات اور قرآن کے مزاج دیکھ کر بتاتے ہیں کہاں امر کا صیغہ ہے کہاں محض مشورے کا ہے کہاں صرف جو ہے وہ تشریف اور ترغیب کا معاملہ ہے صرف شوق دلائے گا ورنہ امر کا ہوتا ہے ایک بندہ جب دعا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی امر کا صیغہ ہوتا ہے اللہم اغفر تو بخش دے تو ایک بڑا چھوٹے کو حکم نہیں دے سکتا وہ درخواست کر سکتا ہے اس لیے صیغہ تو امر کا ہوتا ہے لیکن آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ التجا کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے روایات جو ہے یہ بھی بتا رہی ہیں میں انشاءاللہ اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک آدھ چیز اور ہے وہ دیکھتے ہیں پھر ہم اپنے اس پر آتے ہیں ایک تو وہ تو اگر آپ وہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ ارادہ دل کا وہی کافی ہوتا ہے نیت کے لیے ارادہ تو ہونا ہی چاہیے اگر اس وقت مان ہے اس کے لیے تو وہ جو زکات کا پورا نصاب ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے بس اس وقت اتنا مال ہو کہ قربانی کر سکتے ہو تو وہ قربانی واجب ٹھیک ہے جی اسی طرح اس وقت مجھے ایگزیکٹلی وہ روایت بھی ملی لیکن میرا یہ روایت بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں سے دن کا روزہ رکھنا اس کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اسی طرح راتوں کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ معمولی دن اور معمولی راتیں نہیں ہیں انہیں ہمیں بہت اہمیت دینی چاہیے یہ سارے دن جو ہے پہلے 10 دن ذی الحجہ کے اب گزر رہا ہے یہ آج 8 تاریخ کا ذی الحجہ کل 9 ذی الحجہ نہیں نہیں ساری 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 10 کو تو روزہ رکھنا جو ہے وہ غلط ہے بالکل ٹھیک ہے حرام ہے 10 11 12 بالکل سے کہا عید کا روزہ جو ہے وہ بالکل اس کی جو ہے وہ کہیں سے گنجائش نہیں ہے لیکن اس سے پہلے 9 دن کا روزہ جو ہے بہت مستحب ہے اچھا جی نوی تاریخ کا روزہ اس مبارک اس ماہ مبارک کی نوی تاریخ کو یوم الفا کہتے ہیں اس دن کی فضیلت اس عرصے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ ہے یہی وہ دن ہے جس میں تمام حاجی عرفات کے میدان میں ٹھہر کر حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اس دن کا روزہ یہ خاص اہمیت رکھتا ہے اس دن کا روزہ رکھنے کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں کیا کرتے صغیرہ اور کبیرہ گناہ؟ ہر گناہ گناہ ہے، غلطی ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو آپ دیکھیں گے تو ٹیکنیکلی تو ہر گناہ ہی برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بعض گناہوں کو چھوٹا کہا ہے، بعض کو بڑا کہا ہے. ڈفرنس یہ آتا ہے صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. آدمی نے وضو کی، اس نے کچھ گناہ اللہ نے معاف کر دی، کوئی نیک عمل کیا اس نے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے، یہ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف آدمی کے اعمال سے، نیک اعمال سے، اور جو ہے وہ اس سے جو ہے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی. تو یہاں صغیرہ گناہ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ معاف ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفسی اعمال اور توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حق معاف نہیں ہوتے. جیسے پہلے آیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ چلو صحیح ہے، ایک دن ذلحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، ایک سال کے روزہ ہو گیا نہیں دیکھتا. ایسی بات نہیں، ایک فرض روزہ اور ایک فرض عبادت جو ہے وہ اگر آدمی چھوڑ دے پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ روزے جو ہے ایک فرض روزے کا جو ہے وہ بدل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ نفسی عبادات کا ثواب اللہ انہیں کو دیتا ہے جن سے وہ راضی ہے، اور یہ نعمت بدل نہیں ہو سکتے فرض عبادات کے. تو پھر آدمی گنے کاؤنٹ کرنا شروع کر دے کہ میں نے ایک روزہ رکھ لیا تو ایک سال کے روزے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ وہ اتنا اتنا ثواب دے رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ فرائض ادا کرنے والوں کو. اسی طرح بقرہ عید کی جو رات ہے اس کی بھی خصوصی فضیلت، اور یہ دونوں عید ذہن کی راتوں کی خصوصی فضیلت ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی راتوں کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس طرح بقرہ عید کی رات کی فضیلت بھی احادیث سے ثابت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہ بھرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں. تو یہ جناب معاملات ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بس عید قربانی سے متعلق اور بات پڑھ لیتے ہیں، جس میں وجوب کا ذکر آ رہا ہے جس پر واجب ہوتی ہے. تو یہ بات بتائی جاتی ہے قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل بالغ اور مقیم ہو. عاقل کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ نہ ہو، اب شعور کی حد تک پہنچ گیا ہو، یعنی جو عقل اور فہم رکھتا ہو، مجنون نہ ہو اور کسی ذہنی طور سے جو ہے وہ کسی یعنی کوما میں نہ ہو، جو ہے جنون میں نہ ہو. تو یہ عاقل ہے بالغ، جب بچہ نہ ہو جس میں جو ہے وہ بلوغ کی سطح کو پہنچ گیا ہو، اور مقیم ہو یعنی مسافر پر بھی قربانی سے واجب نہیں ہے. اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو. ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی جان اور عزت کے لیے ضروری ہو، ایسا مال جو اس کی جان کو جو ہے وہ یعنی کھانے پینے کا ہو، یا اس کی عزت کے لیے جیسے لباس اور گھر ہے، یہ چیزیں ضرورت اصلیہ میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو آسائشوں کے لیے چار چار گاڑیاں اور یہ جو ہے کئی کئی گھر اور جو ہے وہ ڈھیروں مال، یہ نہیں آتا ضرورت اصلیہ. اور یہ مال فوج ہونا چاہیے، یا اس کے زیورات ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت اصلیہ سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیدادیں وغیرہ ہوں. قربانی کے لیے اس مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے. اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب، ٹھیک ہے جناب. تو اتنا مال اس وقت ہو ضرورت اصلیہ سے زیادہ کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اسے قربانی کرنا چاہیے. اس کا ثواب کیا ہے قربانی کا؟ جی چند روایات اس میں بھی پڑھ لیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرما رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں. और कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और बालों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की रजा और मकबूलियत के मुकाम पर पहुंच जाता है। बस ऐसा के बंदो दिल की पूरी खुशी के साथ कुर्बानी किया जाए। हमारे पास देने ये तवान आ गया और ये करना है उसके दिल की खुशी के साथ। अल्लाह ताला कितना बड़ा अजर दे रहे हैं इस पर। एक तवील हदीस है, वो भी ज्यादा तरीन कर रही है, इसका तर्जुमा ज्यादा इन्होंने लिखा हुआ है। इमाम अहमद ने जो है नकल की है, इतने मानने ने भी नकल की है रहमतुल्लाह अलैह। आगे ये रिवायत है हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाब ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है और क्या तारीफ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इन सहाबा ने अर्ज किया, फिर हमारे लिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुर्बानी में क्या जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर हर बात केवल एक नहीं। उन्होंने अर्ज किया, तो क्या ऊन का भी? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही साथ है, ऊन बहुत होता है, भेड़ों के ऊपर तुमके हैं और ऊंट है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऊन, यानी ऊन वाले जानवर की कुर्बानी का अजर भी इसी शरह से और इसी हिसाब से मिलेगा कि इसके भी हर बार केवल एक नेकी जो है वो दी जाए। इसी तरह जामी तिर्मिज़ी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना तय्यबा में 10 साल क़याम फरमाए और आप बराबर हर साल कुर्बानी करते हैं। 10 साल मदीना मुनव्वरा में क़याम किया और हर साल कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवायत मौजूद है कि अपनी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत फरमा के गए कि मेरे बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करते रहना, और वो करते रहे इसके बाद भी कुर्बानी। आज तक मुसलमान जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करते हैं। तो ये कुर्बानी बहुत कीमती अमल है और दिल की पूरी खुशी के साथ हमें करना चाहिए, और ये शुरू से आ रहा है, बिल्कुल इब्तिदा से कुर्बानी जो है वो है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यानी जो पहले इंसान थे उन्हीं से जो है कुर्बानी जो है वो वहाँ उनके जमाने से जो है इसका आगाज है। हाबील और बाबील का जो वाकया कुरान में मिलता है, इनकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि कुर्बानी की रूह क्या है, वो अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रजा और ये तक्वा है। अल्लाह ताला तक जो है ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है। पहले लोग क्या करते थे, आपको शायद मालूम हो, आप तारीख पढ़े कुर्बानी की, तो लोग जानवर खाना काबा के सामने जगह करते थे, उसका खून जो है वो काबे की दीवारों पर लगा देते थे और गोश्त जो है वो काबे के आगे डाल देते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे खून और तुम्हारे जानवरों की गोश्त की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो वो खलूस देखता है जिसके साथ इंसान ने ये कुर्बानी की, तो खलूस होना चाहिए जानवर की नमूद और नुमाइश से वो खलूस खत्म हो जाता, सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। और ये कुर्बानी के जानवरों का भी हमें एहतराम करना चाहिए। क्यों एहतराम करें? क्योंकि ये अल्लाह की निशानियों में से है, ये अल्लाह की जो है लिए कुर्बान किए जा रहे, और ये जानवर गोया कि एक इंसान अपनी तरफ से कुर्बानी दे रहा है। ये कुर्बानी का अमल शुरू जो हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का गया, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रहती दुनिया तक के लिए जो है वो जारी कर दिया इस अमल को। तो ये असल में है क्या, ये कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को अल्लाह के सामने कुर्बान कर दें। तो ये कुर्बानी का जानवर हमारी जान का कायम मुकाम होता है, जैसे हम करीब भेजते हैं। तो ये जो है बहरहाल इसकी बातनी जो रूह है उससे भी हमें बहरावर होना चाहिए, उसका भी जहन में इतराक होना चाहिए। आए जनाब जी, सवाल पहले
जी, जो अदारे हैं कुछ जो कहते हैं कि यहाँ कुर्बानी से पैसे जमा करा लें तो हम आपकी तरफ से कुर्बानी कर देंगे, और कुछ अगर आप गोश्त भी लेके जाना चाहें तो इस वक्त यहाँ आ जाए, यहाँ से गोश्त भी ले जाएंगे। इसके मुतालिक अदारत करना है, दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो 3 किस्से करते हैं, एक गरीबों के लिए, एक लिए और एक अल्लाह। अब तीनों भारत की कुर्बानी दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा देता है कि हम उन क्या उनके घरों में प्रवेश देना ठीक है जिन्होंने ऑलरेडी लेकर लोगों को माने सबसे आपने की है मैं जानता हूँ कि आप सरकार भी नसीहत है आपने कुर्बानी की है मैंने भी की है क्या मैं दोष आपके यहाँ भी भेजो
देखिए वाजिब तो सिर्फ जो है कुर्बानी कर देना है अब सारा का सारा आपने तो खा ले तो कोई वो नहीं है बात कोई हराम मामला नहीं है अब मुस्तहब ये है अच्छी बात ये है कि उसके तीन हिस्से कर ले एक अपने लिए रख ले एक रिश्तेदारों में भेज दे इस तरह जब लेन देन होता है तो ताल्लुक बढ़ता है ताल्लुक चीज किस चीज का है ठीक है ना गमी में खुशी में आप शरीक हो रहे कुछ चीजें उनके यहाँ भिजवा रहे हैं कुछ वहां से आ रहे हैं तो ये रिश्तेदारों का हक है और इसी तरह एक हिस्सा पे गरीबों को भी आके ना भूलें ऐसा ना करें खाते पीते पहले लोग हैं उन्हीं में से तकसीम कर दिया और जो गरीब महरूम है वो अभी भी महरूम तो ये मसनून मुस्तहब है कोई अगर सब कुछ रख दे तो आराम नहीं कर रहा लेकिन बेहतर ये है और ये आम जिंदगी में भी होना चाहिए कि आदमी जो कुछ अल्लाह उसे दे रहा है उसमें उसने हिस्से रखे हैं एक अपने लिए एक रिश्तेदारों के लिए गरीब गुरबा के लिए उसी तरह कुर्बानी में खुद करना जाहिर है बेहतर है जानवर को पहले से घर में ला कर रखना उससे एक उनकीत भी हो जाती है ताकत हो जाती है कुछ खिदमत का मौका मिलता है ये सारे काम अल्लाह के लिए हो रहे होंगे तो उसका अजर ज्यादा है लेकिन किसी और को भी वकील बना के उसके थ्रू कर लेना वो भी सही कोई मसला नहीं आसानी है लेकिन जो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है जितना ज्यादा कोशिश करेंगे अब मसाइल तो है आपने इदारे में दे दिया पता नहीं उन्होंने किस तरह किया है तो वो अपनी जगह है लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है बाद लोग तो यानी हमें चाहिए तो ये कि हम ये सारे काम खुद करें लेकिन होता है कि आप जो है वहाँ खड़े होते हैं वो सताई खुली दे रहे हैं वही सब कर रहे हैं सगी उसने कही है नहीं कही है क्या हो रहा है तो वो सब हमें उसका ख्याल रखना चाहिए खुद पार्टिसिपेट करें एक चीज ये भी नजर आती है कि बाद लोग जो है खून नहीं देख पाते तो भाई अभी तुम जानवर का खून नहीं देख पाए तो अल्लाह के लिए अपने प्यारों का खून कैसे देख सकोगे इसकी आदत होनी चाहिए जी तंजीर भाई
बड़े जानवर
पैसे दे रहे हैं आप लेकिन वाजिब नहीं है आपके ऊपर शरीर पर जो जो साइज हैसियत है वो खुद कुर्बानी करेगा, खुद यानी पैसा उसका फर्ज होगा। फराइज और वाजिबात में अपने पैसे से होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्रत के मौके पर क्या किया, दो तैयार के लिए ईमान अल्लाह की नेमत इस्तेमाल। फराइज भी जो है मेरी जिम्मेदारी है ना, वो मेरे वाले की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी इतना कर तो वो अदा किया जाए।
जी जनाब पढ़ना है हमें। जी एक सवाल करी
हुई नहीं नदी में इसका कोई बयान दिया है
अगर कोई और कर देगा तो ठीक है, वो नकली हो जाएगा ठीक है, लेकिन वाजिब नहीं है, वाजिब उनकी कुर्बान। ऐसा भी एक टीम एक ये भी है कि आदमी खुद वाजिब है लेकिन अपनी नहीं कर रहा, किसी और के नाम से कर रहा है, तो उसकी अपनी यानी वो नकली तो हो गई लेकिन वाजिब रह जाएगी उसके ऊपर। वाजिब को करे फिर अल्लाह ने और इस्तेदार दी है तो और नफली जितनी मर्जी करे, एक की जगह दस करे। नबी अकरम से इस्लाम ने कितने ऊँट पर बात किए, सौ एक कितना होता है, एक ऊँट पे कितने से होते सात अच्छे, तो आपने इतना किया सौ ऊँट पर बात की, अल्लाह दे रहे करे। लेकिन ऐसा ना हो कि वाजिब तो अपनी जगह पे रहे और नफली आपने किसी और के नाम से कर दी। अक्सर घरानों में होता है कि वालदैन के नाम से ही कर देते हैं, वालदैन की आप खुद भी तो है, आपकी भी तो बन रही है वाजिब, तो आप अपने नाम से भी करें।
नाम से
बीवी की अगर साइज हैसियत है तो उस पर वाजिब है, वाजिब है। हाँ जी वो अदादा से शोहर की कुर्बानी बीवी के साइज काम नहीं है, बीवी की कुर्बानी शोहर की नहीं है। अगर दोनों साइज हैसियत है दोनों की होगी, एक साहिब हैसियत है वही करे, ज्यादातर खवानीन साहिब हैसियत हो जाती है, जेवरात उनके होते हैं उनकी मिल्कियत होती है। बात हो पास शोहर है शोहर के पहले में थी तो फिर बीवी के नाम से करे, अपने नाम से ना करे, जिसके ऊपर वाजिब है उसकी उससे करे। बाकी तो तीन आप उन के नाम से पूछें जिससे जो है काफी चीजें हैं। बस जी अब तक एक आखिरी सवाल खवानीन का आया हुआ है, झूठ जीवन पैदा ना करना कैसे गुना है, आप बता दें जनाब। पैदे का हुक्म जीवन का हुक्म जो है वो कुरान में मना किया गया है जनाब, ये कबीरा गुनाहों में से झूठ तो सबसे बड़ा गुना है ठीक है जनाब, तो ये कबीरा गुनाहों में आता है, ये इतने मामूली गुनाह नहीं है कि जी ये खुदबा खुद वायब हो जाए, बल्कि इस बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का जो मुख्तसर तरीन इंसान वो होगा जो बड़े बड़े आमाल लेकर पहुंचेगा आखिर के दिन। लेकिन किसी की गीबत की होगी, कहीं झूठ बोला होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी की हस्तलती की होगी, और वहां दावेदार खड़े हो गए कि अल्लाह इसने मुझे ये कहा था, अल्लाह इसने मेरी गीबत की थी, अल्लाह इसने मेरा माल खाया था, और उनके सारे आमाल हमें दे दिए जाएंगे और दावेदार खत्म नहीं होंगे फिर भी बाकी होंगे, फिर क्या होगा, उन दावेदारों के गुनाह इसके सर कर दिए जाएंगे और अंजाम क्या होगा, वो जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे जो है वो आमाल लेकर आया था दौजख में डाल दिया जाए। तो ये इन गुनाहों को छुटाना मुझे बड़े गुनाह है। वैसे अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो उसने ग्राम ने पहले से मतलब बरत तक किया कि कबीरा गुनाह क्या होते हैं और अपनी शिद्दत के एतबार से सबसे बड़ा गुनाह क्या है, उसके बाद कौन सा कबीरा गुनाह है, तो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये हमें पढ़ना चाहिए, चीजें मालूम होनी चाहिए। बाबर ये सवाल आए कितने पैसे हो तो कुर्बानी करनी चाहिए, एक तोला चांदी की क्या कीमत है, चंद सौ रुपए डेढ़ सौ रुपए, डेढ़ सौ पौने दो सौ रुपए है तो साढ़े बावन के जन्म देने के कितने होते, एक सौ पचास रुपए को क्या बनेगा, आठ हजार से कुछ ज्यादा, तो आठ हजार से कुछ कुछ रकम है तो फिर करें हम हिसाब लगा लें, अपने तकी जी पूछ लें तो लाल से चांदी की क्या कीमत जाती है जी, आठ हजार अगर आपकी जरूरत के अलावा आपके हाथ में है इसका कुर्बानी वाजिब है ठीक है जी। अब वो आठ हजार ही साढ़े बावन तोले चांदी, ये हिसाब है सर, साढ़े बारह तोले चांदी या इनके बराबर बात अगर तो मौजूद है जरूरत है अलावा
वो तो अब इतना डिफरेंस हो गया है, सोना तो एक तोला सोने ही से ज्यादा है
जकात के लिए,
ये कुर्बानी के लिए भी यही मिसाल, जकात के लिए एक साल तो ज्यादा शायद है, एक साल तक ये माल जमा है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के दिनों में 52 सोलह चांदी या इसके बराबर माल जरूरत अशिया से ज्यादा है तो कुर्बानी वाजिब होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ बहुत डिफरेंस हो गया, सोना तो एक तोला जो है वो इसकी कीमत के बराबर आ जाएगा, 10,000 है, 10,000 से ज्यादा ही सोना सोना, और चांदी को जब मिलाकर भी 10,000 ही बचती है उसका हिसाब है, क्योंकि चांदी का हिसाब मिनिमम है, इस पर ही हो जाता है, तो 8,500 रुपए अगर बन रहे तो इस पर वाजिब हो जाती है कुर्बानी। जनाब आज से पहले जी, तो ये हमें अपने घरों में रखना चाहिए, तो हम ये सही कह रहे हैं कि बाहर बच्चों के पास भी इतना पैसा हो जाए, वो उन्हें मंथली मिलता है, वो ईद त्यौहार पर उन्हें जमा हो जाता है, ईद के दिन ही जो है ईदियाँ मिलके 500 उसने दे दिया उसने दे दिया, फिर दे दिया, अगर इतना बन जाता है 3 दिन से पहले पहले, यानी 3 दिन के अंदर अंदर अगर इतना माल हाथ में आ गया तो फिर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, जरूरत है अशिया से ज्यादा आ गया, ठीक है जी। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, हम जरा से उसमें छोड़ देते हैं कि जी आज ये काम है छोड़ दो, कुर्बानी नहीं है हमारे पास, तो जरा गौर करना चाहिए, अक्सर लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बिल्कुल सही, पॉलिटिकल रीजन पर, और हमें बिल्कुल साफ साफ मालूम है कि खाल का सही मतलब नहीं होगा, तो वहाँ पर खाल नहीं देनी चाहिए, खाल भी कुर्बानी की जो है वो जानवर कहता है, अब वो तो अब वो चीन में तो अलग बात है ना, वो तो चीन की जबरदस्ती ले गए तो क्या कर सकते आप, उसकी कीमत के तौर पर खाल नहीं जा सकती, खाल बच्चा खाल खुद बेच कर उसका पैसा सबका किया जा सकता है, आप खाल खुद बेच के आगे उसका पैसा जो है नहीं, अगर किसी के पास सोना है लेकिन पैसे नहीं तो क्या करे, सोने को बेच के पैसे हासिल कर, कुर्बानी तो उसके ऊपर वाजिब हो गई जनाब, कुर्बानी करी, तो हमारी खवातीन के साथ यही मामला होता है, अक्सर औकात उनके हाथ में तो पैसा नहीं होता लेकिन जेवरात बहुत होते हैं, तो अपने शौहर से अपने घर वालों से या तो बात करें वरना कोई जेवर छोटा वाला निकाले ताकि ये वाजिब जो है वो अदा हो सके। जनाब अब वक्त नहीं है हमारे पास, 6-7 मिनट है, अब आप क्या चाह रहे हैं, जनाब हेड ऑफ द फैमिली की कुर्बानी सारे घर की कुर्बानी नहीं होती, जहन में रखिए, बाप की वालदैन ने कुर्बानी कर दी तो औलाद अगर साहिबे हैसियत है तो उसे भी करनी चाहिए, हर एक जो इस हिसाब से ज्यादा जिसके पास माल है सबको करना चाहिए।